एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका पहला मेजबान।
और मैं हूँ आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक साथ एक बहुत ही दिलचस्प किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं।
हाँ, किताब का नाम ही ऐसा है कि ध्यान खींचता है।
बिल ब्राइसन की ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग।
बिल्कुल, यानी लगभग हर चीज का संक्षिप्त इतिहास।
नाम से ही लगता है कि भाई क्या गजब का काम हाथ में लिया होगा लेखक ने।
सच में, और ये किताब करती भी यही है। ये विज्ञान की वो बड़ी बड़ी बातें जो कभी कभी थोड़ी डरावनी भी लगती हैं।
हाँ, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन कहाँ से आया, ये सब।
उन्हीं सबको हम जैसे आम पाठकों के लिए मतलब आसान और मजेदार बना देती हैं।
और देखिए, आज के समय में ये कितना जरूरी भी है ना।
हाँ बिल्कुल,
चारों तरफ इतनी जानकारी है पर सब जुड़ता कैसे है वो समझ नहीं आता।
सही कहा,
ये किताब वही बड़ा नजरिया देती है, ब्रह्मांड से लेकर हमारे अपने होने तक।
ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है,
नहीं,
ये तो खोज की एक कहानी है।
हाँ, और ये विज्ञान को लेकर जो हमारी झिझक होती है ना, उसे भी कम करती है, याद दिलाती है कि दुनिया कितनी अद्भुत है।
और सबसे कमाल की बात पता है क्या है?
क्या?
इसे लिखने वाले बिल ब्राइसन, वो कोई साइंटिस्ट है ही नहीं।
अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था।
हाँ, वो तो जाने माने ट्रैवल राइटर हैं। उनकी वो मजेदार किताबें हैं ना, नोट्स फ्रॉम अ स्मॉल आइलैंड जैसी, उनके लिए मशहूर है। बड़ा मजेदार अंदाज है उनका।
तो फिर ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक यात्रा लेखक जो देशों शहरों पर लिखता है, वो अचानक ब्रह्मांड और एटम पर लिखने लगे।
हाँ, सुनने में पहली बार तो लगता है, पर शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।
अच्छा, कैसे?
वो विज्ञान को बाहर वाले की नजर से देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम में से ज्यादातर लोग। वो वही सवाल पूछते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, वो बेसिक सवाल जो शायद साइंटिस्ट लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर बहुत मुश्किल भाषा में बताते हैं।
मतलब वो भी सोचते हैं कि अरे ये सब कितना पेचीदा है, और फिर उसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा, उनकी खासियत ही ये है। वो ढेर सारी जानकारी को आप कह सकते हैं हजम करके उसे सरल, दिलचस्प और कई बार तो हंसाने वाले तरीके से पेश करते हैं।
अच्छा,
मुश्किल साइंटिफिक आइडियाज को रोजमर्रा की भाषा में ऐसी मिसालों से समझाते हैं कि आसानी से पल्ले पड़ जाएं।
हाँ,
और ऐसा भी नहीं कि बस ऊपर ऊपर से लिख दिया। इस किताब के लिए उन्होंने, सुनिए, 3 साल तक रिसर्च की है।
3 साल?
हाँ, दुनिया भर के सैकड़ों एक्सपर्ट्स से बात की।
अरे वाह, ये तो सच में उनके लिए भी एक लंबी यात्रा रही होगी।
तो चलिए अब जरा किताब में और गहरे उतरते हैं। इसका सार क्या है, मतलब कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है ये कहानी? भाई जैसा नाम है वैसा ही काम। ये किताब लगभग हर चीज को छूने की कोशिश करती है।
हर चीज?
हाँ, कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की शुरुआत से, वो बिग बैंग, महाविस्फोट जिसे कहते हैं।
अच्छा,
वहां से शुरू करके फिर तारों, ग्रहों, पृथ्वी का बनना, जीवन का पनपना और फिर आखिर में हम इंसानों का विकास। सच में एक महागाथा है ये।
तो क्या ये बस एक एक टाइमलाइन की तरह है कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है ये। इसका असली मकसद तो ये समझाना है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, मान लीजिए पृथ्वी की उम्भ या एटम का स्ट्रक्चर, वो हमने कैसे जाना।
ओके, कैसे जाना?
हाँ, ये विज्ञान की खोज की कहानी है। इसमें सिर्फ तथ्य नहीं है, इसमें उन वैज्ञानिकों की कहानियां भी हैं जिन्होंने ये खोजें की, उनके जुनून, उनकी गलतियां, उनकी आपस की होड़।
अच्छा,
और कई बार तो बस किस्मत का खेल।
ये दिलचस्प है। मतलब विज्ञान सिर्फ लैब कोट पहने सीरियस लोगों का काम नहीं है, उसमें मानवीय भावना है, ड्रामा, सब कुछ है।
बिल्कुल, ब्राइसन यही दिखाते हैं कि विज्ञान कितना कितना मानवीय प्रोसेस है। और किताब की बनावट भी इसी कहानी को कहती है। अलग अलग हिस्सों में बटी है, ब्रह्मांड की विशालता से लेकर हमारे अपने ग्रह के अंदर की बातें, जीवन के रहस्य सब तक ले जाती है। ये समय के साथ साथ वैज्ञानिक सोच कैसे विकसित हुई वो भी दिखाती है।
तो फिर ये किताब असल में है किसके लिए? क्या इसे पढ़ने के लिए पहले से साइंस जानना जरूरी है?
जरूरी बिल्कुल नहीं। ये हर उस इंसान के लिए है जिसके मन में दुनिया को लेकर जिज्ञासा है, जो जानना चाहता है कि भाई ये सब चलता कैसे है। अगर किसी को लगता है कि साइंस बोरिंग है या बहुत मुश्किल है, तो ये किताब शायद उनकी राय बदल दे।
अच्छा,
हाँ, ये साइंस की दुनिया में कदम रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कह सकते हैं।
तो चलिए फिर कुछ खास हिस्सों में और गहराई से झांकते हैं। शुरुआत ब्रह्मांड के जन्म से करें।
हाँ, किताब का पहला बड़ा हिस्सा हमें वहीं ले जाता है लॉस्ट इन द कॉस्मोस, यानी ब्रह्मांड में खोए हुए। ये हमें बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताता है।
बिग बैंग, ये शब्द बहुत सुना है, पर आसान भाषा में मतलब क्या है इसका?
मतलब सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड, सारे तारे, ग्रह, सब कुछ एक बहुत ही छोटे गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था।
एक बिंदु में सब कुछ?
हाँ, फिर अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगा। उसी शुरुआती एनर्जी से पहले कण बने, फिर परमाणु, और धीरे धीरे तारे और गैलेक्सीज बनी। ये लगभग 13.8 अरब साल पहले की बात है।
कमाल है। और ये तारे कैसे बने और इनका जीवन से क्या कनेक्शन है?
देखिए, तारे असल में गैस और धूल के बहुत बड़े बादल होते हैं, है ना?
हाँ।
वो गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी से सिकुड़ते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती है। इसी से वो चमकते हैं।
ओके।
और सबसे जरूरी बात, तारों के अंदर ही भारी तत्व बनते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं।
अच्छा।
और जो तारे मरते हैं, खासकर बड़े तारे जो सुपरनोवा बनकर फटते हैं।
सुपरनोवा, ये क्या होता है?
सुपरनोवा मतलब एक बहुत बड़े तारे का उसकी जिंदगी के आखिर में होने वाला भयंकर विस्फोट। ये इतना पावरफुल होता है कि कुछ हफ्तों तक ये पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमक सकता है।
बाप रे।
ब्राइसन एक शौकिया खगोल शास्त्री रॉबर्ट इवांस का जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी दूरबीन से सैकड़ों सुपरनोवा खोजे। इन खोजों से हमें तारों की जिंदगी और मौत को समझने में बहुत मदद मिली।
वाह, मतलब हमारे शरीर में जो कार्बन या लोहा है वो कभी किसी तारे के अंदर बना था?
बिल्कुल, हम सब सचमुच तारों की धूल हैं।
रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के,
है ना? चलिए अब ब्रह्मांड से जरा नीचे उतरते हैं अपने ग्रह पर। किताब का अगला हिस्सा है द साइज ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार और उसकी उम्र।
हाँ, ये हमेशा से बड़ा सवाल रहा होगा कि हमारी धरती कितनी पुरानी है।
ये कैसे पता लगाया?
ये कहानी भी बड़ी मजेदार है। पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी बस कुछ हजार साल पुरानी है।
अच्छा।
हाँ, लेकिन फिर जेम्स हटन जैसे जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने चट्टानों को देखकर अंदाजा लगाया कि नहीं भाई, पृथ्वी का इतिहास तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए। उन्होंने डीप टाइम का आइडिया दिया।
डीप टाइम मतलब
अथाह समय। ये सोच कि पृथ्वी लाखों करोड़ों साल पुरानी है।
लाखों करोड़ों साल, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
हाँ, और चार्ल्स लाइल जैसे साइंटिस्ट ने इस आइडिया को और मजबूत किया। फिर आया जीवाश्म विज्ञान, यानी पेलियोंटोलॉजी।
पेलियोंटोलॉजी, ये क्या है?
ये वो साइंस है जो लाखों करोड़ों साल पुराने जीवों के पत्थर बन चुके अवशेषों, मतलब फॉसिल्स, की स्टडी करता है। डायनासोर के बारे में हम जो भी जानते हैं ना।
हाँ हाँ, वो इसी साइंस की देन है। ब्राइसन इसमें कोप और मार्श नाम के दो अमेरिकी साइंटिस्ट की मजेदार दुश्मनी का जिक्र करते हैं, जिसे बोन वॉर्स कहते हैं।
बोन वॉर्स, हड्डियों की लड़ाई।
हाँ, दोनों में ज्यादा से ज्यादा डायनासोर फॉसिल्स खोजने की ऐसी होड़ मची कि उन्होंने एक दूसरे का काम बिगाड़ने तक की कोशिश की। लेकिन इस लड़ाई ने डायनासोर को दुनिया भर में फेमस कर दिया।
साइंस में भी ऐसी दुश्मनी, और इसी हिस्से में वो पीरियोडिक टेबल वाली कहानी भी है।
हाँ, मेंडलीव रूसी केमिस्ट थे। कैसे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को उनके गुणों के हिसाब से एक टेबल में सजाया, ये कहानी भी बड़े अच्छे से बताई है। कैसे उन्होंने खाली जगहें छोड़ी और भविष्यवाणी की कि यहाँ कौन से तत्व मिलेंगे, और वो बाद में सच निकली।
कमाल है। तो ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गई, इसके बाद कहानी कहाँ जाती है?
अब हम आते हैं 20वीं सदी की क्रांतिकारी फिजिक्स पर। किताब का तीसरा हिस्सा ए न्यू एज डॉन्स, यहाँ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से एटम के स्ट्रक्चर का पता चलता है। एटम ज्यादातर खाली जगह है और उसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है।
और फिर आइंस्टाइन।
हाँ।
उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो बहुत फेमस है, पर थोड़ी मुश्किल लगती है समझने में।
ब्राइसन उसे भी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो समझाते हैं कि आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं, स्पेस टाइम।
स्पेस टाइम।
हाँ, और ग्रेविटी असल में भारी चीजों के कारण स्पेस टाइम का मुड़ना या खिंचना है। सोचिए, एक चादर तनी हुई है, उस पर एक भारी गेंद रख दें, तो चादर बीच में धंस जाएगी ना।
हाँ।
अब कोई छोटी गोली उस चादर पर लुढ़काएंगे तो वो गेंद की तरफ मुड़ जाएगी।
बस यही ग्रेविटी है।
अरे वाह, ये मिसाल तो अच्छी है।
और क्वांटम मैकेनिक्स।
हाँ,
वो तो और भी अजीब बताई जाती है।
हाँ, वो तो है। क्वांटम मैकेनिक्स एटम और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स की दुनिया का साइंस है, और उसके नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया से एकदम अलग है।
कैसे अलग है?
वहाँ चीजें निश्चित नहीं होती बल्कि संभावनाओं में मौजूद होती हैं। जैसे एक पार्टिकल एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकता है जब तक हम उसे देखने की कोशिश न करें।
क्या, एक ही समय पर कई जगह?
हाँ, इसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ये हमारे कॉमन सेंस को वाकई चैलेंज करता है।
सच में दिमाग चकराने वाली बातें हैं ये तो। अच्छा, क्या किताब सिर्फ इन बड़े आइडियाज के बारे में है या पृथ्वी के खतरों का भी जिक्र है?
बिल्कुल है। चौथा हिस्सा है डेंजरस प्लैनेट। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी हो सकती है।
खतरनाक कैसे?
इसमें एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स के टकराने के खतरे की बात है, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु।
जैसे वो जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था।
हाँ, माना जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से ही डायनासोर विलुप्त हुए।
ब्राइसन टुंगुस्का घटना का भी जिक्र करते हैं। 1908 में साइबेरिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था।
अच्छा हाँ, जो शायद किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के हवा में ही फट जाने से हुआ था।
और ज्वालामुखी,
उनका भी जिक्र है, खासकर सुपर वॉल्केनो का।
सुपर वॉल्केनो, ये क्या होता है?
ये बहुत बड़े ज्वालामुखी होते हैं, जैसे अमेरिका का येलोस्टोन पार्क एक बहुत बड़े सुपर वॉल्केनो के ऊपर बैठा है।
वाइब्रे, सुपर वॉल्केनो, ये तो डरावना है।
हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे कितनी ताकत छिपी है। इसके अलावा मौसम और जलवायु का जो नाजुक सिस्टम है उसकी भी बात है, जिस पर हमारा जीवन टिका है और जिसे हम इंसान अब बदल रहे हैं।
ये हिस्सा हमें पृथ्वी की ताकत और जीवन की नाजुकता दोनों का एहसास कराता है।
बिल्कुल।
तो ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी हो गई, फिजिक्स हो गई, अब जीवन की बात आती होगी।
हाँ बिल्कुल। पांचवा हिस्सा है लाइफ इटसेल्फ, यानी खुद जीवन, और ये शुरू होता है जीवन की उत्पत्ति के सबसे बड़े रहस्य से।
सबसे बड़ा रहस्य?
हाँ, कि निर्जीव चीजों से पहला जीवन कैसे पनपा। ब्राइसन बताते हैं कि मजे की बात यह है कि साइंस के पास आज भी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है।
सच में, ये तो हैरानी की बात है। हम इतना कुछ जान गए पर ये नहीं पता कि जीवन शुरू कैसे हुआ।
हाँ, ये विज्ञान की सीमाएं भी दिखाता है। खैर, फिर किताब शुरुआती जीवन के बारे में बताती है, जिससे बैक्टीरिया, जिन्होंने अरबों साल पहले हमारी हवा में ऑक्सीजन भरना शुरू किया, और फिर कोशिका यानी सेल की अविश्वसनीय जटिलता।
कोशिका, सेल, जीवन की बुनियादी इकाई है ना?
हाँ, और एक अकेली कोशिका भी एक पूरे शहर जितनी जटिल हो सकती है, सोचिए।
अरे बाप रे।
उसके अंदर डीएनए है जिसमें जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे छोटे छोटे हिस्से हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करते हैं?
ये सेल के पावर हाउस होते हैं, भोजन को एनर्जी में बदलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कभी आजाद बैक्टीरिया थे।
क्या बैक्टीरिया?
हाँ, जो अरबों साल पहले हमारी कोशिकाओं के अंदर रहने लगे। ये दिखाता है कि जीवन कैसे सहयोग से भी आगे बढ़ा है।
गजब। और क्या इस हिस्से में विलुप्ति की घटनाओं का भी जिक्र है, मतलब जब बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो गई?
हाँ हाँ, मैस एक्सटिंक्शंस। पृथ्वी के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। डायनासोर का खात्मा ऐसी एक घटना थी। ये घटनाएं जीवन का नक्शा बदल देती हैं, पर साथ ही नई प्रजातियों के उभरने का मौका भी देती हैं।
तो जीवन बड़ा लचीला भी है और नाजुक भी।
हाँ, और आखिर में हम इंसानों की कहानी।
सही।
छठा और आखिरी हिस्सा है द रोड टू अस, हम तक का रास्ता। ये मानव विकास की कहानी है। इसमें लूसी जैसे शुरुआती होमिनिड फॉसिल्स की खोज का जिक्र है।
होमिनिड मतलब हमारे पूर्वज, जो बंदरों से अलग होकर इंसानों की तरफ बढ़ रहे थे।
हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। ब्राइसन इस बात पर जोर देते हैं कि मानव विकास कोई सीधी लाइन में ऊपर चढ़ने जैसा नहीं था।
अच्छा।
नहीं, बल्कि एक झाड़ीदार पेड़ जैसा था जिसकी कई शाखाएं थीं, और उनमें से ज्यादातर तो खत्म हो गई। हम यानी होमो सेपियंस उस पेड़ की बस अकेली बची हुई टहने हैं।
ये सोचना भी अजीब है कि कभी इंसानों की और भी प्रजातियां थीं।
बिल्कुल। किताब मानव सभ्यता के हाल के उभार और हमारी चेतना, मतलब सोचने, समझने, सवाल पूछने की हमारी अनोखी क्षमता पर भी सोच विचार करती है। और अंत में ब्राइसन हमें इस पूरे अविश्वसनीय सफर पर सोचने के लिए छोड़ देते हैं कि कैसे अरबों साल के संयोगों और घटनाओं के बाद हम यहाँ हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं।
ये तो वाकई एक जबरदस्त यात्रा है जो ये किताब हमें कराती है। इस पूरी कहानी से कुछ खास विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं?
देखिए, कई गहरे संदेश हैं इसमें। मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो शायद यही है कि हमारा होना, हमारा अस्तित्व ये अपने आप में एक लगभग असंभव लॉटरी जीतने जैसा है।
असंभव लॉटरी?
हाँ, ब्रायसन बार बार दिखाते हैं कि कैसे अनगिनत बार पासा हमारे पक्ष में पड़ा। ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक क्यों हैं, पृथ्वी पर सही हालात कैसे बने, जीवन के विकास की हर मुश्किल बाधा कैसे पार हुई, तब जाकर हम यहाँ हैं, सोच विचार कर रहे हैं।
भारत में हम अक्सर भाग्य या किस्मत की बात करते हैं ना?
हाँ, करते हैं।
ये किताब उसे एक साइंटिफिक नजरिए से दिखाती है, ये अस्तित्व का परम संयोग है।
हाँ, ये सोचकर तो विनम्रता आती है। और दूसरा संदेश क्या कहेंगी आप?
दूसरा बड़ा संदेश ये है कि विज्ञान कोई एकदम साफ सुथरी मशीनी चीज नहीं है।
नहीं,
ये एक गहरा मानवीय प्रयास है।
मानवीय प्रयास?
हाँ, इसमें जुनून है, जिज्ञासा है, लेकिन साथ ही गलतियां हैं, ईगो है, साइंटिस्ट के बीच कॉम्पिटिशन है, और कई बार तो बस किस्मत का साथ दे जाना भी शामिल है।
अच्छा, ब्रायसन क्लेयर पैटरसन जैसे साइंटिस्ट का उदाहरण देते हैं। वो पृथ्वी की सही उम्र पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में उन्हें पता चला कि हमारे पर्यावरण में सीसा मतलब लेड कितना खतरनाक तरीके से फैला हुआ है।
अरे,
फिर वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़े हो गए। ये दिखाता है कि विज्ञान समाज से जुड़ा है और वैज्ञानिक भी हम जैसे इंसान ही होते हैं।
ये जानना जरूरी है कि विज्ञान परफेक्ट नहीं है बल्कि इंसानों का काम है। और कोई खास थीम?
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर चीज का गहरा जुड़ाव, इंटरकनेक्शन।
जुड़ाव?
हाँ, कैसे एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं है बल्कि एक ही बड़ी कहानी के धागे हैं जो आपस में बुने हुए हैं। जैसे वो बात कि हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे के दिल में बना था, यह हमें सीधे ब्रह्मांड से जोड़ता है, या कैसे पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाएं जीवन के विकास पर असर डालती हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ, हम सब एक ही जाल का हिस्सा हैं, और वो समय और स्थान का पैमाना, उसका भी जिक्र है।
हाँ, वो भी एक बड़ा विषय है। ब्रायसन हमें ब्रह्मांड की अकल्पनीय विशालता और डीप टाइम यानी समय की अथाह गहराई का एहसास कराते हैं। जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और पृथ्वी 4.5 अरब साल,
हाँ,
तो हमारी अपनी जिंदगी या पूरी मानव सभ्यता कितनी छोटी लगती है। ये नजरिया हमें हमारी रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर देखने में मदद करता है।
और शायद ये भी कि हम अब भी कितना कम जानते हैं।
बिल्कुल, पांचवा संदेश यही है, हमारा गहरा और स्थायी अज्ञान। इतनी सारी खोजों के बावजूद हम अब भी बुनियादी सवालों के जवाब नहीं जानते, जैसे जीवन ठीक ठीक कैसे शुरू हुआ।
हाँ, आपने बताया था।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है जिनसे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा बना है। ये किताब हमें ज्ञान देने के साथ साथ हमारी अज्ञानता का भी एहसास कराती है, जो हमें और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है।
और आखिरी संदेश जीवन के बारे में?
हाँ, जीवन का अद्भुत लचीलापन और साथ ही उसकी नाजुकता। जीवन ने पृथ्वी पर भयानक आपदाएं झेली हैं, बड़े बड़े महाविनाश देखे हैं, फिर भी वो किसी न किसी रूप में बचा रहा, पनपता रहा। लेकिन साथ ही हमारा जीवन और पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम बहुत नाजुक संतुलन पर टिका है। जरा सा बदलाव जैसे क्लाइमेट चेंज इस संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत के संदर्भ में सोचें तो हमारी बायोडायवर्सिटी कितनी कीमती है और उसे बचाना कितना जरूरी है, ये किताब इस बात को और पुख्ता करती है।
ये सारे संदेश वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी होंगे जो दिमाग में रह जाते हैं, यादगार किस्म के।
हाँ बिल्कुल, ब्रायसन के लिखने का स्टाइल ही ऐसा है, कई बातें सीधे असर करती हैं। शब्दशः कोट करने के बजाय उनके पीछे का जो विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से।
हाँ बिल्कुल, जैसे कौन सा विचार?
एक विचार जो मुझे बहुत छूता है वो ये है, अगर आप खुद को चिमटी से एक एक परमाणु करके अलग करें तो आपको बस थोड़ी सी महीन धूल मिलेगी।
अच्छा,
कभी जीवित नहीं था लेकिन वो सब मिलकर कभी आप थे।
वाह,
ये हमें बताता है कि जीवन कोई जादुई चीज नहीं है जो परमाणुओं में होती है, बल्कि ये उन परमाणुओं के खास तरीके से संगठित होने का, उनके जुड़ने का नतीजा है। जीवन व्यवस्था में है, सामान में नहीं।
ये तो अस्तित्व को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। और कोई?
एक और है जो हमारे जुड़ाव को दिखाता है कि आपके शरीर का हर परमाणु, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ लगभग निश्चित रूप से कई तारों के अंदर बना है और आप तक पहुंचने से पहले शायद लाखों अलग अलग जीवों का हिस्सा रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं। हम सब एक दूसरे से और इस कायनात से जुड़े हुए हैं।
हम तारों की संतान हैं। और वो असंभाव्यता वाली बात, वो भी थी ना?
हाँ, वो भी बहुत शक्तिशाली है। सोचिए कि आपके अनगिनत पूर्वजों में से हर एक करोड़ों सालों तक फैली उस चेन में जिंदा रहने, बड़ा होने और अपना वंश आगे बढ़ाने में कामयाब रहा।
हाँ।
कोई कुचला नहीं गया, खाया नहीं गया, डूबा नहीं, भूखा नहीं मरा। हर पीढ़ी में सही समय पर वो जेनेटिक मटेरियल का छोटा सा चार्ज सफलतापूर्वक अगली पीढ़ी तक पहुंचा, जिससे अंततः आप बन सके। ये हमारे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की अविश्वसनीय, लगभग चमत्कारी असंभाव्यता को दिखाता है। हम में से हर कोई सचमुच एक जीता जागता अजूबा है।
ये सुनकर तो लगता है कि हमें अपने होने का जश्न मनाना चाहिए। और एक आखिरी विचार,
वो जेबीएस हल्डेन का कथन जिसे ब्राइसन दोहराते हैं, ब्रह्मांड न केवल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजनबी है, बल्कि उससे भी ज्यादा अजनबी है जितनी हम कल्पना कर सकते हैं। ये हमें विज्ञान की सीमाओं और असलियत की अद्भुत जटिलता की याद दिलाता है। हमें लगता है हम बहुत कुछ समझ गए, पर शायद सच्चाई हमारी सोच से कहीं कहीं परे है।
ये सारे विचार तो बहुत गहरे हैं, लेकिन क्या इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई मतलब है? मतलब क्या हम इन बातों से कुछ सीखकर अपने जीवन में उतार सकते हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किताब साइंटिफिक लिटरेसी बढ़ाती है, मतलब विज्ञान की समझ।
हाँ ये तो है।
आज की दुनिया में इतने सारे मुद्दे साइंस से जुड़े हैं, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। अगर हम साइंस के बेसिक बातें और उसके काम करने का तरीका समझेंगे तो हम इन मुद्दों पर बेहतर ढंग से सोच पाएंगे, सही और गलत जानकारी में फर्क कर पाएंगे।
सही कहा। अगली बार जब मौसम की भविष्यवाणी सुनेंगे या किसी वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे तो शायद उसे एक अलग, ज्यादा जानकारी वाले नजरिए से देख पाएंगे।
बिल्कुल। और दूसरी बात, वो जिज्ञासा वाली।
हाँ, क्यूरियोसिटी।
ये किताब हमारे अंदर दुनिया को लेकर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और आश्चर्य का भाव जगाती है। ये हमें रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ खास देखने के लिए प्रेरित करती है।
जैसे
अगली बार जब आप आसमान में तारे देखें, या अपने बागीचे में कोई कीड़ा देखें, या बस सांस लें, तो शायद आपको ब्राइसन के बताई कोई कहानी याद आ जाए और आप उस पल को ज्यादा गहराई से महसूस करें। ये सीखने की ललक जगाती है।
मतलब दुनिया को एक नई नजर से देखना सिखाती है, और वो अनिश्चितता को स्वीकारना, उसका क्या?
ये भी एक अहम सीख है। देखिए, विज्ञान हमेशा पक्के जवाब नहीं देता, वो लगातार बदलता है ना?
हाँ।
नई खोजें पुरानी धारणाओं को बदल सकती हैं। ये नजरिया हमें जीवन में आने वाले बदलावों और अनिश्चितताओं का सामना करने में भी मदद कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि पता नहीं कहना भी ठीक है, और हमेशा सीखते रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और जोखिम वाली बात, रिस्क।
ये हमें रिस्क और संभावना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, जैसे भूकंप या बाढ़, या फिर हेल्थ से जुड़े रिस्क। एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपनाने में मदद मिलती है, न तो बेवजह डरना, नहीं लापरवाह होना।
सहयोग की अहमियत भी तो है इसमें, मिलके काम करना।
बिल्कुल। विज्ञान दिखाता है कि बड़ी खोजें अक्सर अकेले नहीं होती, हजारों लोग मिलकर काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जमा होता है। ये बात हमारे काम की जगह, हमारे समाज, हर जगह लागू होती है। मिलकर काम करने से हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं।
और आखिर में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हाँ, वो तो है ही। जब हम पृथ्वी के अरबों साल के इतिहास को, जीवन के नाजुक जुड़ाव को, और इस ग्रह पर अपनी छोटी सी जगह को समझते हैं, तो पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता और जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। हमें एहसास होता है कि यह ग्रह कितना अनमोल है, और इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो मेरे लिए सबसे यादगार या हैरान करने वाली बात शायद यही रही, हमारे अस्तित्व का सरासर संयोग पर टिका होना।
हाँ, वो लॉटरी वाली बात।
हाँ, ये सोचना कि कितनी चीजें बिल्कुल सही होनी पड़ी ताकि हम यहाँ हो सकें, ये दिमाग को सुन्न कर देता है। और साथ ही विज्ञान के पीछे की वो मानवीय कहानियाँ, वो जुनून, वो गलतियाँ, वो संघर्ष, ये याद दिलाती हैं कि ज्ञान की खोज कितनी रोमांचक यात्रा है।
मेरे लिए सबसे गहरा एहसास वो जुड़ाव वाला रहा, इंटरकनेक्टेडनेस।
अच्छा,
कि हम सब इस ग्रह के सारे जीव, और यहाँ तक ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बने हैं, एक ही कहानी का हिस्सा है। वो तारों की धूल वाली बात मेरे जहन में अटक गई है। ये हमें एक दूसरे से और इस प्रकृति से जोड़ता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है, मुझे लगता है।
बिल्कुल। और अपने श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ।
इस विशाल ब्रह्मांड और जीवन की इस लंबी अविश्वसनीय कहानी में वो कौन सा अनसुलझा सवाल या रहस्य है जो आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? वो क्या है जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे?
जरूर सोचिएगा इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।